نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الروم مکمل کریں گے آیت نمبر 39 سے 60 تک. پچھلے لیسن میں سے سوال تھا کہ کیا مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا پہنے یا صاف ستھرا رہے. بالکل آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے آپ کو اپنی طہارت کا خیال رکھے, اپنے آپ کو صحیح رکھے. اسی طرح یہ سوال کہ کیا عورت کی ضرورت کو پوری کرنا بھی آدمی کی ذمہ داری جیسے عورت کے اوپر ہے, آدمی کی جو بھی یعنی جسمانی ضروریات ہیں وہ پوری کرنا, تو بالکل ایسا ہے کیونکہ عورت کی عزت کی حفاظت بھی مرد کے اوپر ذمہ داری ہے, اور یہ بھی عورت کی عزت سے ہی متعلق ہے کہ وہ اور اپنی عورت کو بھی اسی طرح اس کے جذبات کا خیال رکھے اور اس کی ان ضروریات کا خیال رکھے جیسے کہ عورت کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ایک اور سوال ہے کہ کیا گھر کے اندر آپ نے کہا ہے کہ اچھا پہنے اور ایسے جو بھی پہن سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کے اندر بھی اپنی سمجھ سے کام لیجئے, یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے اندر بالکل ننگے کپڑے پہن کے گھومنا شروع ہو جائیں یا ایسے جو کہ بالکل اپروپریٹ نہیں ہے, کوئی منی اسکرٹ آپ پہن لیں کوئی یہ پہن لیں, یہ مطلب نہیں ہے. مگر یعنی آج کے دور کے مطابق جیسے کپڑے باہر لوگ پہنتے ہیں اس طرح سے پہن لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو ڈھیلے ڈھالے ہی ایسے بالکل کپڑے پہن کے اور سادہ لباس پہن کے ہی گھومتے رہیں, بلکہ اچھے کپڑے پہنیں اور جیسے ٹرینڈز چل رہے ہیں ویسے پہنیں تاکہ ان کو یہ لگے کہ باہر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ میرے پاس میری بیوی گھر میں موجود ہے. اور اس چیز کا خیال رکھا جائے جس گھر میں جوان بیٹے ہیں یا جوان بھائی رہتے ہیں ساتھ, تو اپنے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بھلے وہ محرم ہیں لیکن ایسی کچھ ریویلنگ کپڑے نہ پہنے جائیں جو کہ اگر ایک لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ اکیلی رہتی ہے تو وہ زیادہ اس میں مطلب پہن سکتی ہے ایزیلی, جبکہ جس گھر میں ایسے جوان مرد ہوں تو وہاں پہ ذرا مطلب حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا مومن کے مال میں کن کن لوگوں کا حق ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ان میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے بتایا گیا. انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو ہی زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں, تو سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق بتایا گیا, اور خاص طور پہ ایسے رشتہ دار جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دینا بہت ہی افضل ہے کہ جو یعنی آپ کو زیادہ پوچھتے نہیں ہیں, جو آپ کے ساتھ زیادہ رکھتے نہیں ہیں, جو یعنی ناشکریہ کرتے ہیں, گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, ایسی چیزیں کرتے ہیں, ان کو دینا اور بھی زیادہ افضل ہے. پھر اس کے بعد مسکین اور مسافر, اور پھر یہ سب کچھ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو ہے فلاح ایسے لوگوں کے لیے. اب یہاں پہ آگے اور مال کے خرچ کی بات آئی. جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو دوسری بھی کئی جگہ ہیں, تحفے تحائف بھی دیتا ہے اور بھی کئی جگہوں پہ لگاتا ہے, تو اس آیت کو دیکھتے ہیں. اگلی آیت, آیت نمبر 39 سورۃ روم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما آتیتم من ربن, اور جو دو تم سود میں سے, لیربوا فی اموال الناس, تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں, یعنی جب آپ دوں کو دیں گے تو پھر بڑھ کے آئے گا. فلا یربو عند اللہ, تو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھا کرتا, اللہ کے ہاں نہیں وہ بڑھتا. پھر اللہ کے ہاں کون سا بڑھتا ہے؟ وما آتیتم من زکات, اور جو تم زکات میں سے دیتے ہو, تریدون وجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, فاولائک هم المضعفون, تو وہ لوگ ہیں جو وہ اپنے بڑھانے والے ہیں, اپنا جو انہوں نے دیا ہے اس کی وجہ سے اپنا اجر بڑھانے والے. इसमें एक तो ये भी कहा जाता है कि ये पहली आयत है जो सूद की मुजम्मत में उतरी, कि जो तुम सूद लेने के लिए जो लोगों को कर्ज देते हो तो तुम सोचते हो कि मेरी दौलत बढ़ जाएगी इस तरह, क्योंकि जाहिर है मैंने 1,00,000 रुपया अगर मैंने किसी को कर्ज दिया है तो अब हर महीने 10-10,000 मुझे मिलता रहेगा और मेरा 1,00,000 वहीं का वहीं है, सूद मेरे पास आता रहेगा, तो इससे मेरी दौलत बढ़ेगी। वो ऐसे बड़ा नहीं करती। फिर किस चीज से बढ़ती है? देने से, अल्लाह के रास्ते में, ज़कात से, सदकात से। लेकिन हम तो उलट देखते, ऐसा ही है ना, हम तो ये देखते हैं कि भाई सूद के ऊपर कर्जा दिया हुआ और फिर बैंक में यहाँ रखा हुआ है तो फिर हर महीने हमें इतना इतना मिलता जा रहा है, और जब हम सदकात और ज़कात करते हैं तो हमारा माल कम हो रहा है। इसी को ईमान कहते हैं कि जो बात अल्लाह ताला ने फरमा दी कि इस चीज़ से बढ़ता है वो बढ़ रहा है, और जिस पे फरमाया, अब हो सकता है अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं अल्लाह की बात हक है, तो हो सकता है इसमें बरकत भी बढ़ जाती हो। कि और वाकई ऐसा है कि जब आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो ना सिर्फ ये कि अजर मिलता है बल्कि उस माल की बरकत हो जाती है, उस माल की सिक्योरिटी हो जाती है। और जो रिबा है, इससे माल, फरमाया यम हकुल्लाह रिबा, अल्लाह ताला तो खत्म कर देता है रिबा को, तबाह कर देता है, बिल्कुल उसका सफाया हो जाता है, वो माल नहीं, यानी वो कायम नहीं रह सकता। वो आप देखेंगे उसके अंदर बेबरकती, देखने में वो नोट होंगे लेकिन उनके अंदर कोई बरकत नहीं होगी। तो इस को इस आयत में ये भी एक माना लिया गया है, लेकिन ज्यादा जो इस आयत का माना लिया गया है वो एक और तरह से लिया गया है, और वो ये है कि रिबा को यहाँ पे तोहफे का माना दिया गया है। इसमें इब्न अब्बास की, मुजाहिद, जहा, कतादा, इकरमा, यानी इन सब से मरवी है कि यानी तोहफा जो यहाँ पे मुराद है कि जो कोई किसी को तोहफा इस इरादे से देता है कि लोग जिसको मैंने तोहफा दिया है वो लोग मुझे इससे ज्यादा लौटाएं, तो ये अल्लाह के हाँ नहीं बढ़ा करता। यानी रिबा से मुराद यहाँ पे तोहफा है, हदिया जिसको हम कहते हैं, यह मुराद है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में इस आयत को देखेंगे, क्योंकि वैसे भी ये सूरत कौन सी है, मक्की है या मदनी? मक्की सूरत है। तो फिर मक्की दौर में अभी रिबा की हरमत के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी और ना ही जक़ात की कोई फर्जियत ऐसी हुई थी, तो यहाँ पे जक़ात से भी मुराद सदक़ात वगैरह है या फिर तोहफा ही कह सकते हैं। तो फिर उसका माना क्या होगा? फिर ये माना होगा कि जो भी तुम तोहफा देते हो ताकि वो बढ़ जाए लोगों के मालों में जाके, यानी आज मैंने इनको भाई इनके बच्चे की शादी पे 100 डॉलर दिया तो कल ये मेरे बच्चे की शादी पे आकर 200 तो देंगे ना, ये है कि बढ़ा देना। या फिर किसी अमीर को तोहफा दे रहे हैं तो बहुत कीमती तोहफा जरा देने की कोशिश की, यानी अपनी हैसियत से भी बढ़ के, क्यों? इसलिए कि ये लोग अमीर हैं, कल को जब ये मुझे वापस देंगे तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही बढ़ा के देंगे ना। तो ये बढ़ा नहीं करता। जब इंसान इस नियत के साथ किसी को तोहफा भी देता है तो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता, यानी इसका अजर कोई नहीं मिलेगा। वरना वैसे तो हदिया भी जो है सदका है, हदिया देना भी जो है ना, वो वाला सदका नहीं जो आप जैसे गरीबों को देते हैं अपनी मुसीबतें टाल जाए और मेरी ये हो जाए, वो वाला सदका नहीं। नेकी को भी सदका कहते हैं, ठीक है ना, मुस्कुराहट भी सदका है। वो क्या आप कोई गरीब को दे रहे हैं कि मेरी मुसीबत, हदीस में है कि मुस्कुराहट सदका है, यानी नेकी है एक, तो ये भी एक नेकी है, एक नेक काम है। नेक की क्या होती है? जिसके ऊपर हमें अजर मिलना है, सवाब मिलना है। तो सदका भी हदिया भी ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर सवाब इंसान पाता है, अगर वो किस लिए हो, तुरीदूना वजह अल्लाह, अल्लाह की चेहरे की खातिर हो। अगर अमाते ही तुम इन जक़ात, अगर तुम जो भी देते हो तुम जक़ात में से, यानी सदका देते हो जिसको हम खैरात कहते हैं, या तुम तोहफा देते हो किसी को, हिबा हदिया देते हो, तुम चाहते हो अल्लाह की रजा, तो वो बढ़ाएगा तुम्हारा अजर। तो इससे क्या पता चला कि असल तोहफे के पीछे भी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कोई बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे मैंने गरीब को दिया चाहे अमीर को। ये नहीं अमीर को अगर तोहफा दिया तो उसका कोई नहीं, या मैंने गरीब को दिया तो मुझे जरूर अजर ही मिलेगा, नहीं। डिपेंड करता है कि क्या मेरी नियत थी। गरीब से तो यूजुअली हमारी नियत नहीं होती कि हमें इसे बढ़ के मिले, मगर गरीब से भी कोई फेवर्स लेना मकसूद होता है, कल को ये हमारे यहाँ के काम ज्यादा करेगी, कल को जब जरूरत पड़ेगी चलो इसको बुला लूंगी, अभी इसको नहीं तोहफे तहाइफ दिए हैं, बच्चे की शादी पे दे दिए हैं, इस चीज़ पे ईद पे दे दिए हैं, मैं गई हूँ अपनी कंट्री तो मैं कुछ उसके लिए ले गई हूँ, अब ये ज़रा मेरे पैर दबाए, मेरे काम करे, ज़रा मेरे आगे पीछे होगा, तो अब तो हम कह ही सकते हैं ना इसको, क्योंकि हमने इसको तोहफा भी दिया, तो ये भी इन रिटर्न उसे सर्विस ले लेना, तो किसी चीज़ की उम्मीद करना कि अब मुझे भी इन रिटर्न कुछ मिले, इस तोहफे की कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह की नज़र में। ठीक है, इस पर गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं, ये मुबाह है, लेकिन सवाब भी कोई नहीं है। लेकिन देख लें, वही चीज अगर अल्लाह की के वजह उसकी रजा के लिए देंगे, उसी चीज पे हमें अजर मिल सकता है, लेकिन हम अपना अजर गंवा देते हैं। और आज हमने तोहफों को कारोबार बनाया हुआ, हालांकि तोहफा हदीस में आता है क्या, तहादु तहाबु, यानी तुम तोहफा दो, इससे क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी आपस में, मोहब्बत होगी आपस में। तो तोहफा का मकसद क्या है असल में, मोहब्बत को बढ़ाना, या फिर बाज दफा ऐसा होता है हमने किसी ऐसे को देना चाहती हैं जो सफेद पोश हैं या उनके हालात अच्छे नहीं हैं, उनको खैरात क्या के देंगे तो वो नहीं ले सकते, उनकी इज्जत नफ्स का मामला है, मजरूह होगी, उनको आप हर्ट कर देंगे, तो हम तोहफा दे देते हैं उनको। इस सूरत में भी हो सकता है कोई ज़रूरत है किसी की, उसको आप देते हैं तोहफा, उनकी हेल्प करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, आप मोहब्बत बढ़ाने के लिए देते हैं, यही तो मकसद है। लेकिन जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, इंसान का दिल करता है दिल भी निकाल के दे दे इसको, दिल भी हाजिर हो इसके लिए, तो आप अब कैसे उसको एक्सप्रेस करें, तो आप कोई तोहफा दे देते हैं उसको। तोहफा ये लगे बंदे के हमारे ऊपर ये जो एक चट्टी पड़ गई, हाय अल्लाह मुसीबत के, अब हमें तोहफा देना पड़ेगा, फलां की शादी आ गई, फलां की सालगिरह आ गई, तो कई तो बेकारी चीजें बनाई हुई है ना, या हमें किसी के घर जा रहे हैं तो अब हमें तोहफा देना पड़ेगा, किसी ने बुला लिया अब हमें, तो ये तोहफा कोई टैक्स नहीं है, तो तोहफा कोई आपके ऊपर एक मुसीबत के लिए नहीं, ये तो मोहब्बत बढ़ाने का जरिया, और अल्लाह की रजा के लिए दिया जाए तो फिर अल्लाह ताला भी खुश हो रहा है। लेकिन हमने उलट इसको कर दिया, और ये ऐसा कारोबार बन गया कि जो लेने वाले हैं तोहफा वो भी मुंह से मांग के तोहफा लेते हैं कि भाई अब नो बॉक्स गिफ्ट, कोई बॉक्स गिफ्ट ना लेकर आए, यानी मुझे कैश ही दिया जाए। ये कौन सा तोहफा होता है जो मांग के लिया जाए, तोहफे में तो कोई उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए दूसरे की तरफ से कि अब मुझे ये कुछ दे। आप अगर अपनी खुशी कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि आप लोगों से मांग के लें कि मुझे कुछ अब मेरे लिए लेकर आना, और देखना ये ही लेकर आना मेरे लिए जो मैं कह रहा हूँ, कोई और चीज ना लें। अब लोग इसका क्या बताते हैं, नहीं भाई फिर इतनी गंद बला जमा हो जाता है, फिर ऐसा जमा हो जाता है। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कभी सुनी है आपने कि अगर तुम्हारी हमसाई तुम्हें बकरी का खुर भी भेज देना तो उसको भी हकीर ना समझो। कुछ किसी ने कुछ भी दे दिया, एक कापी उठा के दे दिया, एक बिरच उठा के दे दी, जो आपके कोई काम के नहीं, बस वो तोहफा है, दैट्स इट। तोहफा तोहफा होता है, वो कोई किसी के ऊपर पाबंदी थोड़ी है कि वो, हाँ नहीं, जरूरी है कि उसने देना हो, या जरूरी है कि वो यही चीज दे, जो उसकी बिसात में होगा, जो उसकी हैसियत होगी, जितना वो कर सकता होगा कर ले, जो अकलमंद होगा वो आपको कैश ही दे देगा, उसको पता ही होगा कि हाँ भाई ये इसको मैं बजाय अपनी तरफ से कोई चीज दूं तो ये अपनी पसंद से ले ले, जो अकलमंद होगा वो ऐसे कर लेगा। लेकिन जो अगर नहीं अफोर्ड कर सकता होगा तो हो सकता है वो कोई और चीज ले आए, उसके घर में हो सकता है कोई और चीज पड़ी हो, वो उठा के ले आए, वो अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ कर ही ले। लेकिन हम बाज दफा इसको ऐसा बिजनेस बना लेते हैं, और फिर बिजनेस भी ऐसा वैसा नहीं है, फिर उसके बाद तोहफा भी कर्ज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, यानी जिसको दिया जाता है वो भी कॉपियां भर रहे हैं लिख लिख के, किसने मुझे कितना दिया ताकि कल को मैंने लौटाना भी है। ओ भाई तोहफा ऐसा थोड़ी होता कि भाई आपके ऊपर एक प्रेशर हो जाए, आपके ऊपर एक कर्ज की तरह हो जाए कि अब मैंने वापस भी देना। तो ये जो हमारे ऊपर एक प्रेशर है ना देने का भी कि वापस भी मैंने लौटाना है, ये तोहफा नहीं होता। यहाँ लेने वाले को ये हो मुझे भी ज्यादा करके मिले, और लेने वाला भी प्रेशर में, देने वाला भी प्रेशर में, ये किस किस्म के तोहफे हैं, इनको तोहफा तो नहीं फिर कहना चाहिए। इनको कहें कि ये आपकी टिकट है, समझ लें कि आपने अगर हमारे इवेंट पे आना है तो ये टिकट आप जरा बाय कर लें, कितने की भी जितने की भी आप जाए ये कह दें फिर उसको, मगर वो जो बलाए जान बन जाए वो कौन सा तोहफा होता है। अब बाज तो कहते हैं कि हमने तो फलां को बुलाना ही इसलिए, हमने उसके बच्चों की शादी में इतना दिया था तो अब उनसे वसूल नहीं करना हमने। ये देख लें कि हमने आज हदीये का तो मतलब ही होता है लुत्फ व करम के साथ किसी की रहनुमाई करना, यानी कोई मुआवजा थोड़ी होता है। यहाँ पे हमने ये देखा है लिखा हुआ फ्री गिफ्ट, ओ भाई गिफ्ट, इन लोगों को तो समझ नहीं, हम भी वैसे में, ओ भाई गिफ्ट तो होता ही फ्री है, गिफ्ट भी कभी पैसों का होता है। तो अगर बदले के लिए दे रहे हैं या वो भी इस तरह वसूल कर रहा है कि मुझे भी अब बदला ही देना है, तो मकसद ही खत्म हो गया इसका। हाँ ये अलग बात है कि देखिए आपको कोई तोहफा दे तो आप जरूर उसको तोहफा आप भी दे, मगर ऐसा ना करें कि यानी जैसे आपने मकाफाते अमली बना लिया कि अभी अभी उसने दिया आपने भी उसको फौरी उसको लौटा के कि ये तेरा हदीये का बदला है बस, उनके दूसरे को महसूस भी हो जाए। बाज दफा आप बड़े प्यार मोहब्बत से किसी को देते, वो फौरन ही ऐसी चीज उठा के दे देता कि आपको लगता है कि ये तो इसने बदले का बदला ही किया, फिर कितना दुख होता है। अगर आपने अच्छी नीयत से दिया था तो बहुत तकलीफ होती है कि हमने क्या सोच के दिया, ये इसको अदला बदला कर रहे हैं। तो ये हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत मुबारक थी कि जो आपको हदिया पेश करता था तो आप मौके पे आप भी उसको हदिया दे देते थे, इसमें तो कोई हरज नहीं। आप बेशक उसे बढ़ा के दे दें, वो आपकी अपनी है, मगर जो ले जिसने आपको पहले दिया था उसको नहीं ये दिल के अंदर रखना चाहिए कि अब मुझे लौटने में ज्यादा मिले, ये अब मुझे इससे ज्यादा इसको देना। ईदी हमने अगर बच्चों को, इनके बच्चों को $10-10 दिए तो ये अब हमारे बच्चों को 20 दें, क्योंकि 10 तो हमने भी इनको दे दी, अब इनको बढ़ा के देनी चाहिए, इसमें भी मुकाबले हो जाते। तो याद रखिए तोहफे का कोई कीमती होना जरूरी नहीं है, आप किसी को जितनी आपकी हैसियत। अच्छा मुझे आप पहले ये बताएं तोहफा क्या देख के देना चाहिए, जिसको दे रहे हैं उसकी हैसियत या अपनी हैसियत या उसने हमें क्या दिया था, ये अपनी हैसियत देख, ये नहीं है कि दूसरा चूंकि बहुत अमीर है तो अब हम कर्ज भी लेके तो इसको तोहफा देंगे, यहां अब हम बिल्कुल अपने आप को स्क्वीज कर लेंगे लेकिन हमें इसको बहुत बड़ा तोहफा देना क्योंकि ये ऐसे है, और ना ही ये देखना कि उसने हमें क्या दिया, उसने हमें जो भी दिया वो उसकी हैसियत ही, हमने जो देना वो हमारी हैसियत है। और फिर मौके की मुनासिबत से होना चाहिए ना, जाहिर है बाज दफा को बहुत बड़ा मौका होता है, किसी ने बहुत बड़ी कामयाबी ली है तो आप उसके मुताबिक भी दे सकते हैं अगर आपकी हैसियत है, लेकिन अगर कोई छोटी चीज है तो उसके मुताबिक भी दे सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है। और जैसे मसलन तोहफों में इसराफ भी ना करें कि इतना ही इसराफ कर दिया, इतनी फजूल खर्ची कर दी तोहफा देते वक्त, वो भी अब पता है ना शैतान के भाई कहलाते हैं जो कि इसराफ करने वाले हैं। तो तोहफा जरूर दें, को तोहफे को पर कोई ये नहीं हम कह सकते जी फलाने उस पर नहीं देना चाहिए, फलाने वक्त में नहीं देना चाहिए, ये तो रस्में हैं और हमने नहीं रस्में करनी, नहीं इस तरह की बात नहीं है। शादी ब्याह पे आप जरूर तोहफा दें, या किसी का बच्चा पैदा हुआ है आप जरूर तोहफा दें, आप मुंह दिखाइए आप जरूर दें, कोई मतलब हज वगैरह से आया आप तोहफा दें, कोई कोई इसमें वो नहीं, मगर तोहफा तोहफा ही रहना चाहिए। हम आज तक यही नहीं बात को समझे कि तोहफे का मकसद जो होता है उसको सामने रख के किसी को दें, या हाँ मगर ऐसी चीजों पर ना दे दें कि आप जी 30 साल के हो गए तो आप ये तोहफा ले लें, आप 40 साल के हो गए तोहफा ले लें, ये तो कोई बिल्कुल बेकार बात है। मगर हाँ मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने कोई कामयाबी पढ़ाई में की है तो अब ये नहीं कहेंगे नहीं जी ग्रेजुएशन पे देना तो हराम है ये तो इन लोगों की होती है, नहीं अगर उस बच्चे ने मेहनत करके कुछ अचीवमेंट उसकी थी तो आप उसको जरूर दें, इसमें तो कोई रस्म की बात ही नहीं। आप कहीं शादी करने लगे हैं, आप वहां पे दूसरों के साथ नया एक ताल्लुक जोड़ रहे हैं, वो चाहे नए लोग हैं चाहे वो पहले से आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन एक चूंकि नया ताल्लुक जोड़ा है एक दूसरे को दें तोहफा ताकि मोहब्बत बढ़े, ताकि आप करीब आए और दिल से दें तोहफा, और ऐसा भी ना करें जहां पे बेटी का रिश्ता करना हो वहां पे तो कीमती तोहफे दे रहे हैं लड़के वाले को, और जहां पे बेटे का रिश्ता करें तो यहाँ पे तो तोहफा हम देना ही भूल गए क्योंकि यहाँ पे तो हमने लेना ही लेना है, देना तो नहीं है हमने, क्योंकि वो लड़की वाले हैं वो देना हम क्यों दें, ये तो हमारा तरीका नहीं, ये तो हमारी रस्म नहीं। तो इसमें रस्मों की बात नहीं है, तोहफे का मकसद मोहब्बत बढ़ाना है। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे किसी के साथ मसलन आपकी कोई रंजिश हो जाती, कोई किसी के साथ कोई ऐसी बदमजगी हो गई, कोई आपस में कुछ यानी खिचपिच हो गई, तो फौरन तोहफा दे, कोई अच्छा सा तोहफा लेके बड़े अच्छे तरीके के साथ उनको प्रेजेंट करें। जरूरी भी नहीं है कि कोई अब कोई बहुत ही बड़ी चीज हो तो फिर ही आपने तोहफा देना, वैसे भी आप तोहफा दे सकते हैं किसी को। तो इन चीजों का भी जहन में रखना चाहिए, बाज दफा हम इतना चीजों को सर पे सवार कर लेते हैं ना, बस ईद होगी तो कोई तोहफा दिया जा सकता है और इसके अलावा नहीं हमने तोहफा देना, आप और उसमें भी दें, कोई इसके अंदर वो नहीं है मसला, ना इस्लाम ने कोई लिस्ट दी है कि आपने जी फलाने वक्त में तो लाजमी तोहफा देना और फलां फलां वक्त में ना आपने बिल्कुल नहीं तोहफा देना, ये पाबंदी है तोहफा देने पे, नहीं, आपका जब दिल चाहे जितनी हैसियत हो, जितना आप दूसरे के लिए यानी जज्बात रखते हैं ये भी डिपेंड करता है ना कि आप कितने दूसरे के लिए अपने दिल के अंदर कितनी आपकी मोहब्बत है। बाज लोगों के लिए तो इंसान का दिल चाहता है दिल खोल के रख दे, बाज लोगों के लिए उतना नहीं होता, जाहिर है हर एक के साथ आपकी बराबरी के जितने जज्बात नहीं होते, तो बाज को आप उतना भी दे देते हैं जितना के लिए आप अपनी अपनी कोई चीज खरीदते हैं, बाज को आपको हर वक्त आपके पास भी नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, बाज को उससे कम देना पड़ता है, बाज को अपनी हैसियत से भी ज्यादा दे देते हैं। तो ये सारा इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितना किसी के साथ है। बाज करीबी रिश्ते होते हैं तो आप उनको बहुत बढ़ के देते हैं, वो इतने प्यारे होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यही है कि अगर अल्लाह से अजर चाहते हैं तो फिर ये नहीं देखना कि मैं किससे कहाँ दूंगी, किस वक्त दूंगी, कितना लौटाया जाएगा, मैं जी कॉपी में लिख लूं और जी फलाने ने मुझे इतना दिया है, फिर आप जब हमारे बच्चे उसके बच्चे की शादी आएगी वो बुलाएगी तो फिर आप कॉपी देख खोल के देख रहे हैं उसने मुझे 100 दिए थे, आप मुझे 200 तो करके दूँ ना, फिर ऐसा तो फिर अच्छा नहीं लगता। और फलाने फलाने ने हमें बुलाए थे, वहां वहां हम गए हैं, अब उन सारों को भी बुलाओ ताकि आप इनसे वसूलियां हो, तो ये नहीं करना। देना है अल्लाह के चेहरे के लिए दें, जो बुलाने वाले हैं जो दावत करने वाले हैं वो भी अल्लाह के चेहरे के लिए करें, वो भी इसके लिए ना करें, इसलिए करें कि मैं लोगों को खिलाऊं, खिलाना ही में अजर है, इसके लिए करें। और उसमें भी लोगों को ऐसा मजबूर करके जिच ना कर देंगे, कोई आपको कह रहा हो कि भाई मेरी कोई मजबूरी है मैं नहीं आ सकता या कुछ, और आप कहेंगे नहीं मैंने तो खिला के ही रहना है, अब मैं चाहे तुम्हारे कोई भी मजबूरी हो तुम आओ और आके खाओ, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें मोहब्बतों को बढ़ाने वाली हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे के को करीब लाने वाली हैं, ये ऐसी नहीं है कि जोर और जबरदस्ती की हूं जिसमें दूसरे की कन्वीनियंस और फिर हम नाराज होकर बैठ जाते हैं, अब तो हमने तो उसको ये दिया था और उसने तो ये भी नहीं किया, और फिर देखिए अब हमने तो उसको ये दिया उसने इतना भी नहीं किया कि हमें शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया तो करना चाहिए। आप देखें सूरह ये इसमें दहर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग लोगों को खाना खिलाते हैं लेकिन कहते हैं हमें तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहिए, मैं हम तो अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितने अजीम लोग थे। हम उसके बाद वेट करते हैं अब शुक्रिया का मैसेज कब आएगा, अच्छा इसने तो मैसेज ही नहीं किया, इसने तो पलट के कहा ही नहीं, अब आइंदा नहीं इसको देना, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम वाकई अल्लाह की चेहरे की तरफ देख के उसकी रजा के लिए कर रहे होंगे तो ना तो ऐसी तफरीक करेंगे कि हमने किसको किस तरह देना है, और ना ही हम ये तफरीक करेंगे कि ससुराल को कितना देना है और मैके को कितना देना है और कैसा उनको देना और कैसा उनको देना, इसलिए कि हम तो अल्लाह के लिए दे रहे हैं, फिर फर्क कैसे हुआ, वो उनको भी अल्लाह के लिए देना था और ससुराल को भी अल्लाह के लिए दे रहे हैं। तो जब इंसान अल्लाह को भूल के इंसानों की खुशी सामने रखता है ना, मैं हूं वो उसको क्यों दूं, तो उसको क्यों दूं, फिर ये चीजें आती हैं। लेकिन जब अल्लाह के लिए दे रहा होता है तो फिर ये सब चीजें निकल जाती हैं, फिर गिले शिकवे भी नहीं रहते, जी हमने तो उनको दिया था उन्होंने फिर देखो इन रिटर्न उसने मुझे क्या दिया, मैंने जब उसको दिया था ना मैंने इतने का तोहफा दिया था और देखो जी वो क्या लेकर आई है, यानी फिर ना बदला चाहिए होगा, ना शुक्रिया चाहिए होगा, ना वो जो आपको इन रिटर्न तोहफा देती है ना उसका कुछ चाहिए होगा, फिर आप सब से एक बराबर मिलेंगे, जो आपको दे रहा है तोहफा उससे भी और जो नहीं देता उससे भी, ये नहीं कि इसने मुझे क्या दिया जो मैं इससे मिलूं, इसको मैं क्यों बुलाऊं, ये तो कोई अच्छा तोहफा ही नहीं लेकर आती। तो यहां से हमने सीखा कि तोहफा भी हमने अल्लाह की खातिर देना है, और अल्लाह की खातिर देने की क्या निशानी होगी, कैसे पता चलेगा मेरा तोहफा अल्लाह की खातिर है कि नहीं, कि मुझे रिटर्न की ख्वाहिश ना हो, मुझे ये लालच ना हो, मैं कोई प्रेशर में ना दे रही हूं एहसान के तौर पे या कोई रसम समझ के कि हाय यहां पे तो देना ही पड़ता है ना, अब देना ही पड़ेगा इसके बगैर तो नहीं, इसलिए देना है कि अल्लाह ताला इसके ऊपर मुझे अजर देना, ये भी मेरी नेकी में काउंट कर देना। देखिए शैतान हमें क्या कराता है कि वो टाइमिंग्स जहां पे हम अल्लाह से अजर पा सकते वो भी हमारे गंवा देता है, जिस वक्त हमारी नीयतें खराब हो जाती हैं। ठीक है, सारा इसके अंदर ना नीयत के ऊपर है, अगर नीयत ये है कि आज मैंने इसको तोहफा दिया, कल को यानी ये हमारा ये काम करके देगा, कोई हाई पोस्ट पे है, कोई बड़ी उसके ऊपर है, भाई कल को काम तो पड़ते रहते हैं ना, आपको पता है, तो फिर कॉन्टेक्ट बना के रखने चाहिए। उस तोहफे का कोई अजर नहीं है, कोई अजर नहीं। और आप देखें बेचारे वो लोग जो ज्यादा के रिस्पांस में देते हैं, कि हमें रिस्पांस में बाद में हमें जब हमारा मौका आएगा तो हमें ज्यादा मिलेगा, हो सकता है उस वक्त वो बंदा कहीं मूव हो जाए, हो सकता है वो बंदा उस वक्त आपके साथ कोई टर्म्स ही ना रहे उसके, हो सकता है वो फौत हो जाए, हो सकता है वो ना हो आपकी जिंदगी में, फिर क्या होगा, पैसा भी गया, उसका भी नहीं कुछ मिला, अजर भी गंवाया, कुछ भी नहीं मिला, ना दुनिया में उसका कोई फायदा ना आखिरत में फायदा। तो यहां पे बताया गया किसी के साथ भी भलाई या किसी को तोहफा भी इवन इस नियत से ना दो कि इसके जवाब में मुझे ज्यादा मिलेगा, इन रिटर्न बढ़ के मिलेगा। ये भी एक रिबा की फॉर्म हो गई, मगर खैर वो वाला रिबा जो माल का होता है उस पर तो गुनाह है ना, इस पर मैंने आपको बताया कि गुनाह तो नहीं है मगर अल्लाह के यहां इसका कोई अजर भी नहीं है। तो फिर किसी को देते वक्त कैसे देना, ये सोच के देना कि मुझे क्या देगा ये, जब मैं फिर इसको आज मैं इसके घर जा रही हूँ तो ये लेकर जा रही हूँ, कल को मैं इसको बुलाऊंगी तो ये भी फिर कल को ही अच्छा ही लेकर आए, या ये तो इतने अमीर हैं इनको तो ज्यादा ही लाना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो इसको हदीये को कारोबार नहीं बनाना, कम अज कम हम लोग जो कुरान पढ़ रहे हैं हमें कम अज कम ये देखना चाहिए कि तोहफे का मकसद क्या है, और क्या वाकई मैं मकसद पा रही हूँ, क्या मैं उस मकसद के लिए दे रही हूँ। अगर इस मकसद के लिए देंगे ना तो अपने घर की बेकार चीजें जो फालतू हैं, जो गंद मंद है, वो नहीं किसी को उठा के देंगे। हाँ ठीक है, किसी को अगर जरूरत है, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डिनर सेट पड़ा हुआ है और आप सोचते हैं कि इन्होंने नहीं इन्होंने अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, आपने उनको दे दिया बजाय खरीदेंगे, तो चलो ये उनके काम आ जाएगा, जो आप किसी काम की चीज दें वो तो ठीक है, लेकिन एक है कि फालतू का गंद मंद जो भी घर में पड़ा हुआ उठाया और चलो जी किसी के मुंह पे मारा कि हमारे का घर का कूड़ा साफ हो, ये तो मोहब्बत नहीं बढ़ाएगा, ये तो नहीं किसी की मोहब्बत बढ़ाएगा। वो आप कोई ऐसा गंद मंद हो खैरात कर दे, किसी को दे दें, कोई और कोई गरीब है वो उसको यूज कर लेगा, जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसी चीज को किसी के सर पे ना थोप दे कि भाई तोहफे के नाम पे अब ये इसको उठा के दे दिया, उसको दे दिया, जो किसी के जरूरत उसकी काम की भी नहीं है चीज। तो अगर आपको अब कभी ख्याल आने लगे तोहफा रैप करते हुए इससे अच्छा मुझे मिलेगा, या फिर हाय ये परेशानी होने लगे कि हाय अब क्या करूं, अब तो मुझे उससे बढ़ा के देना है, अब तो मुझे, अगर हैसियत है बढ़ा के दे सकते हैं, नहीं हैसियत कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे यहाँ तो यही एक परेशानी हो जाती है कि हाय इस समर में तो इतनी शादियां हैं कि एक बंदे की जिसने हर वीकेंड पे शादी पे जाना हो वो क्या करे। तो अब देना इसलिए ताकि मेरे ताल्लुकात अच्छे हों, मोहब्बत बढ़े और अल्लाह ताला मुझे अगर अजर दे। और दूसरे को भी लेते हुए ना तो ये सोच के लेना चाहिए कि क्या इसने दिया है, क्या इसकी हैसियत है, क्यों इसने मुझे ऐसा दिया, क्यों वैसा दिया, ना माइंड करना चाहिए इस चीज के ऊपर, ना ये सोचना चाहिए कि इसने मुझे दे दिया अब मेरे सर पे एक बोझ पड़ गया। अब बाज लोग किसी से तोहफा लेते वक्त भी, किसी ने बताया कि इस तरह से तोहफा लिया कि उन्होंने कहा कि आपने तुम्हारे ऊपर बोझ डाल दिया, यानी लोग बोझ समझने लगे, इसीलिए ना, क्योंकि हमारे माशरे के ट्रेंड्स ऐसे हो गए कि आप किसी को देते हैं तो वो फिर अब इसको भी लौटाना पड़ेगा और उससे बेहतर में लौटाना पड़ेगा, हो सकता है वो इतनी हैसियत ना रखता हो लौटाने की। ये तो जो देने वाला है वो कभी भी ये सोच के ना दे कि इसके बाद मुझे मिलेगा, बढ़ा चढ़ा के तो छोड़े कि इसके बाद मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, ऐसे देने से बेहतर है कि आप दे ही ना। और जब भी हमारे यहाँ कितनी एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ और नाराजगियाँ और ये होती हैं, ये नहीं दिया, शुक्रिया नहीं किया कभी, इसके बाद पूछा नहीं हमें, हम इतनी बड़ी चीज़ इनके घर लेके गए, हमने ये दिया, हमने फलाने की शादी पे इतना दिया था, उसकी मंगनी पे ऐसे किया था, ये नहीं चीज़ें होनी चाहिए। और ये तभी होती हैं जब इंसान जो है ना नीयत के अंदर जब हमारे खराबी होती है। बाज दफ़ा लोग अपनी बेटी के ससुराल में बहुत अच्छी कीमती चीज भेज देते हैं, या बेटी को कीमती चीजें, और बहू का ही हक पे डाका डाल के भेज देते हैं। अब वो बहू है जिसके साथ आपने रहना है, जिसके साथ आप रोज जिंदगी में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, मतलब एवरी डे का उसके साथ मामला है, उसकी भी चीज लेके तो उठा के बेटी को दे दी। अब बेटी ठीक है उसको दे दी आपने, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक आदमी ने देना चाहा था एक बेटे को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं मैं इसका गवाह नहीं बनूंगा, या तो सारी औलाद को दो। लेकिन हमारे यहाँ ये भी स्टैंडर्ड्स हैं, बेटी के ससुराल बस खुश हो जाए। ये बात हमें तब क्यों नहीं याद आती जब बेटे के ससुराल होते हैं? इसका मतलब हमारे तोहफे देने अल्लाह के लिए नहीं थे ना, सिर्फ अपनी कुछ चीजें निभाने के लिए या बस ऐसे ही एक रस्में दुनिया के लिए। ठीक है रस्में सारी बुरी नहीं है, ये नहीं कि हम कोई रस्म के खिलाफ, रस्में सारी बुरी नहीं, तोहफा देने की रस्म बहुत अच्छी रस्म, तोहफे दें, मगर बात तोहफे की अच्छाई या बुराई की बात नहीं, बात ये पीछे नीयत क्या है, ये रस्म है या नहीं है वो नहीं है बात, क्या आप वाकई रस्म के लिए दे रहे हैं या अल्लाह की रजा की खातिर दे रहे हैं या आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए। आपस में मोहब्बत बढ़ाना भी वही चीज है कि तब आप अल्लाह की रजा के लिए देंगे और बगैर एहसान जताए, क्या क्योंकि एहसान उस वक्त का तो नहीं होता, दे दिया जाता है तो उसके बाद होता है, हमने इतना दिया था, हमने उस जमाने में आपके बच्चे की शादी थी हमने तो ये किया था, ये एहसान जता के अपना भी जाया कर दिया। तो ये यहाँ पे हमें सबक मिला, फला यरबू इंदल्ला, वो अल्लाह के हाँ नहीं बड़ा करता जब वापस मिलने की गर्ज से या ज्यादा वापस मिलने की गर्ज से तोहफा देना होता है, वो जायज नहीं है। और वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्ला फउलाइका हुमुल मुदाइफून, अल्लाह ताला इसका अजर देगा जो अल्लाह के चेहरे के लिए, इसका मतलब है जब देना होगा किसी को तो ये सोच लिया करें उस वक्त जब गिफ्ट रैप कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू मुझे इसका अजर देना, ये सिर्फ तेरी खातिर मैं दे रही हूँ, फिर किसी ऐसे बंदे को देना भी मुश्किल नहीं होगा जो आपके साथ ज्यादा अच्छा नहीं करता। अपने आप को रिमाइंड करा लेना हमने अब इंशाअल्लाह ताला हर तोहफा देने से पहले। और इसका मतलब इसमें भी तुरीदूना वजहल्लाह से पता चला कि इसमें कोई हरज नहीं है कि आप अल्लाह की रजा के लिए दें, ये जरूरी नहीं हमें कहा नहीं जी मुझे तो कोई अजर ही नहीं चाहिए, मुझे नहीं इसका कुछ चाहिए, मैं तो वैसे ही दे रही हूँ, नहीं ऐसे ना कहें, कहें अल्लाह मुझे तेरी रजा चाहिए, अल्लाह मुझे तुझसे अजर चाहिए कि मैं तो मोहताज हूं। या अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी से उठे तो ऊपर सोने की टिड्डियां गिरने लगी, कैसे वो ले रहे थे, अल्लाह मैं तेरी अता से कभी भी बेनियाज नहीं हो सकता, मुझे तो चाहिए, मैं तो मोहताज हूं। तो हमें चाहिए अल्लाह से अजर, मगर अल्लाह सिर्फ तुझसे चाहिए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, देखें यहाँ पे कितनी चीजें बताई गई, अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, नंबर टू जो रिस्क देता है, फिर जब पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि तुम्हें तुमसे बेनियाज हो गया, नहीं वो तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारी प्रोविजन सारी रिस्क में, सिर्फ ये नहीं कि खाने पीने का, हवा पानी खाना पीना सेहत जिंदगी और जितनी भी आपकी जरूरियात हैं वो सब रिस्क है जो आपके सर्वाइवल के लिए, सारा कुछ प्रोवाइड किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा। मौत भी इंसान सोचता है कि शायद मौत मेरे हाथ में है, अगर मौत इंसान के हाथ में होती तो बहुत सारे बूढ़े एड़ियां ना रगड़ रहे होते, और मौत इंसान के हाथ में होती तो कई जवान बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ के दुनिया से ना चले जाते। मौत भी इंसान के अपने हाथ में नहीं है, इंसान सोचता है मैं जब चाहूंगा मर जाऊंगा, नहीं। सुम्मा युमीतुकुम वो मौत देगा तुमको, सुम्मा युहयीकुम फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, फिर जिंदा करता है। हल मिन शुरकाएकुम मन यफअलु मिन ज़ालिकुम, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए ये करे, इनमें से कोई भी चीज पैदा करके दिखा दे किसी को, रिस्क दे के दिखा दे किसी को, मौत दे या जिंदा कर दे दोबारा किसी को, कोई भी नहीं ऐसा कर सकता। आप देख लें जितने लोग किसी और की अल्लाह के सिवा पूजा करते हैं, वो किसी को पैदा करके दिखा दें या कोई मर गया उसको उठा के दिखा दें या किसी को मौत दे के दिखा दें, कोई नहीं कर सकता। सुबहानहू, पाक है वो। किससे पाक है? हर नक्स से, हर ऐब से, हर कमजोरी से, हर एक तरह के फ्लॉ से, हर एक तरह की कमी से वो पाक है। इस बात से क्या पता चलता है? गलती करने से पाक है, गलत फैसले करने से पाक है, क्या पता चला? इसका मतलब जब हम सुबहान अल्लाह कहते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह तेरा तो कोई फैसला गलत नहीं हो सकता, अल्लाह तेरे से तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती, अल्लाह तू तो पाक है ना, ये कह रहे होते हम। उसके बावजूद हम अल्लाह के फैसलों पे राजी नहीं होते देते। बहुत बड़ा कलम है सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो सुबहानहू पाक है वो हर एक ऐसी बात से पाक है जो उसकी शान के लायक नहीं, उसे पाक है। वताला और बुलंद तर है अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शरीक ठहराते हैं, इससे अल्लाह बहुत बुलंद है। ये तो जो दुनिया में लोग ऐसे ही बुत बना के बैठे हुए, कोई अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे वो बहुत आला है, बहुत ऊपर है, ना उसका कोई नुकसान होता है, ना उससे कोई उसकी कोई कमी आ जाती है उसकी बादशाहत में, ना उसको कोई ये थ्रेट है, ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उससे बहुत बुलंद है। अब जो हम आयत देखने लगे, अगली आयत, ये आयत आज जितनी यानी समझ लें सामने आई है ना प्रैक्टिकली, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोगों के सामने इस तरह से नहीं आई हो जैसे कि आज है। क्योंकि आज इस आयत को आप देखते हैं बहुत प्रोमिनेंट, जैसे जैसे दुनिया में यानी वसत हो रही है, एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है, यहाँ पे जितना भी फसाद होता है एक जगह पे होता है ना, सारे इंसान उससे मुतासिर होते हैं। देखते हैं आयत को, जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, फसाद जाहिर हो गया खुश्की में भी और समंदर में भी। खुश्की में यानी खुश्की में भी जितनी इंसानों के साथ मामलात हैं उनके अंदर और जो भी चीजें इंसानों को इफेक्ट करती हैं उनमें भी फसाद जाहिर हुआ, और बाहर में भी फसाद जाहिर हुआ। बाहर में कैसे? जो समुद्री मखलूक है या इंसान जो समुद्रों में जाते हैं कोई काम करने के लिए, उनके लिए बीमा कसबत आई दिन नास, क्यों ये जाहिर हुआ है फसाद? ये लोगों के अपने हाथों की कमाई है, अपने करतूतों की वजह से ये फसाद जाहिर हुआ। फसाद का मतलब क्या है यहाँ पर? फसाद का मतलब है, एक तो जो आप जाहिर फसाद देखते हैं, कहत सालियां, पानी में डूबने के वाकयात, आग लगना, चीजों की बरकतें खत्म हो जाना, नफा मंद चीजें जो हैं उनका नफा कम तो नुकसान ज्यादा हो जाना, आफतें ही आफतें, मुसीबतें ही मुसीबतें, हर तरफ। ये अगर आज आप, मैं यकीन करें जब भी मैं इस किस्म के फसादात देखती हूँ ना, हमें ये आयत जरूर मेरे जहन में आती है ना। जितने आप ये जो इवन रिलीजियस बेसिस पे या जुबानों के इख्तलाफ की वजह से या इलाकों की वजह से जो एक दूसरे को कत्ल गारत कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, देखें आप अगवा हो रहे हैं, बेरोजगारी है, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, ये जो बेहयाइयों का एक सैलाब आया हुआ है, आप देखें हर तरफ ड्रग्स हैं, ये सब फसाद है। ये आयत आज के बिगड़े हुए हालात की वजह आपको बता रही है कि क्यों है, कि हम सब बेचैन हैं। कोई इंसान इस वक्त के अंदर ना कोई नहीं कह सकता जी मैं तो बड़ी चैन की मीठी नींद सोती हूँ और मेरी जिंदगी में चैन ही चैन नहीं, हर तरफ फसाद है, फसाद। आप देखिए डिप्रेशन जहनी, बेहयाइयां, कत्लो गारत, बेईमानियां, पल्यूशन, बीमारियां, ये जो अब जो जितनी बीमारियां आज आम हैं और जिस किस्म की जानलेवा बीमारियां आम हुई हुई हैं, कभी मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, एड्स है, कैंसर है, कोई उसको पीछे बताते हैं अब जी आप ये खाना खा रहे हैं ना इसकी वजह से,
किसी ने कह दिया माइक्रोवेव रेज की वजह से, किसी ने कह दिया ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं आपके इर्द गिर्द हर तरफ तारे हैं और ये ऑल द टाइम ये जो फोन है इंटरनेट है और बिजली है और आपके हर वक्त इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसकी वजह से ये बीमारियां और सब हो रही हैं। कोई कह रहे हैं कि जी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं उनकी वजह से हो रहे हैं, यानी ये तो ये सब किसके कमाल आते हैं जनाब, इंसान के अपने हाथों की है ना कमाइयां। आज वो वक्त आ गया है कि ये नहीं समझ आती इंसान को कि मैं खाऊं क्या। अगर आप गोश्त खाने लगते हैं, चलो जी आपने उठाया बीफ उठाया गोट उठाया, नहीं जी वो जी रेड मीट है ये ना खाएं, अब आप चिकन की तरफ आए और ये तो इतना ज्यादा तबाहकुन है क्योंकि ये तो इस तरह इनको फीड देते हैं ये ऐसे करते हैं वो करते हैं, अब वो आपने छोड़ा। आप सब्जियों की तरफ आए, वो उनके ऊपर वो बेतहाशा स्प्रे है कि वो खाने का भी कुछ हाल नहीं रहा, उनके अंदर भी इतनी तरह की उल्टा नुकसानात है बजाय फायदों के। अना आप अंदाजा कीजिए कि यानी आप जो गंदुम खाते हैं ना, गंदुम ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी है, वो आप सोच रहे हैं ये वो गंदुम है जो पहले थी, नहीं ये तो कुछ और का और ही बना दिया हुआ, इसीलिए तबाह कर रही है ये सेहतों को, इसीलिए मोटापे हैं, इसीलिए और इतनी सारी बीमारियां, बैलेंस खराब हो गया ना ये जो दुनिया का, ये इसलिए कि इंसान तूने लिमिट्स क्रॉस की हैं, तुमने बिगाड़ पैदा किया है, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो ये किसने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, कौन है जो वो गायों को और इनको ऐसी ऐसी फूड्स दे रहा है, वो बढ़ रही हैं मोटी हो रही हैं, इसी तरह फसलों पे ऐसे स्प्रे किए जा रहे हैं, फलों पे ऐसे किए। एक जमाना था, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये कहते थे कि हेल्दी होने। आज एप्पल देखें टॉप ऑफ द लिस्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स और ये स्प्रेस किए जाते हैं, सबसे ज्यादा मॉडिफाइड हो गया। अब मैंने इतनी जगह पे देखा, मुझे कम से कम आम आम स्टोरों के अंदर तो मुझे ऑर्गेनिक एप्पल ना मिला। अब ऑर्गेनिक आप कहां से खाएं, किधर से लेकर आए ऑर्गेनिक, इतना महंगा है गोश्त, ऑर्गेनिक कहां से लेकर आए आप, ये फसाद किधर से है। शुगर को आज कहते हैं व्हाइट पॉइजन है, नमक को आज कहते हैं व्हाइट पॉइजन है, किधर जाएंगे कि किसने ये पॉइजन बनाए। एक जमाने में तो शुगर थी ही नहीं, गुड़ और यही खाते थे ब्राउन शुगर, अब कहते हैं जी बैक टू बेसिक्स चले जाओ, बैक टू बेसिक्स, इसका मतलब वही ठीक था। ये तो जो आज तक आप हमें यहां तक लेकर आए हो वो इंसानों का ही किया हुआ ना, ये किए धरे हमारे अपने हैं। फिर उसके बाद इनके जरिए जो बीमारियां हैं, आप देखें आप एक दूध पीना चाहें वो भी पैस्चराइज्ड है, उसमें भी वाइटामिन डी ऐड की हुई है, उसमें भी कैन फूड उठा के देख लें, कैन फूड सारा उसके नुकसान आप कभी इस पर सर्च करके देख लें आपको खुद पता चल जाएगा। ये जो दुनिया में एक्सप्लोजन ये कर रहे हैं असलहे और इसकी इतनी ज्यादा बहुतात कर दी है और उसकी वजह से एक्सप्लोजन होते, ये भी हमारे जिस्मों को मुतासर करते, इनसे भी बीमारियां पड़ रही, किधर जाए इंसान। इंसान तूने अपने लिए खुद जहर का इंतजाम, वो जो पहले हम मुहावरा बोलते थे ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारा, खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं, खाने पीने की चीजें भी जहर बन गई हैं। फिर आप देख लें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और भाई ये तो खत्ता ही रहने के काबिल नहीं रहेगा जब पानी सारे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी नीचे आ रहा है, वो किस लिए, तुमने अपने खुद मुसीबत डाली, अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए प्रिजर्व किया हुआ था पानी वहां पे, वो पानी तुम्हारी जरूरत के मुताबिक तुम्हें मिलता था साफ। फिर उसके बाद इन्हीं वजह से ये जो फैक्ट्रीज लगाई आपने, उनकी वजह से उनके धुएं और उनकी पोल्यूशन की वजह से क्या हाल हो गया। आज इंसान सांस भी लेते हैं तो सांस की बीमारियां, सांस लेना भी मुश्किल हो गया, ये सांस भी आपको प्योर नहीं आती, पानी पोल्यूट हो चुके हैं। आप देखें ये जो आपने प्लास्टिक के थैले बना लिए, ये प्लास्टिक के थैले इतनी बड़ा जहर है, ये डीकम्पोज होते ही नहीं है, आप गार्बेज में फेंक देते हैं ना, ये जहां पे जाके वो उनको फेंकते हैं ये जमीन के अंदर, आप 100 सालों के बाद भी निकालेंगे वो प्लास्टिक वैसे के वैसे ही होगा, पोल्यूट कर रहा है ये जमीन को, और हर तरफ प्लास्टिक के थैले। देखिए ना कहां कहां इंसान ने अपने कामों की वजह से अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। माइक्रोवेव रेडिएशन देखे, फिर आप ये देखें ओजोन लेयर में जो वो कहते हैं जी वो हो गया सुराख हो गया, ये ऐसे हो गया किस वजह से, ये भी तो तुम्हारे अपने ही ये जो फैक्ट्रियां वगैरह लगाई हैं इन्हीं की वजह से ना, इसीलिए अमवात कसरत से हो रही है, इसी वजह से फिर बीमारियां फैल रही हैं, और डिप्रेशन और ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। करप्शन जो है ये भी फसाद है, करप्शन कितनी बढ़ गई है, रिश्तों में से मोहब्बत उठ गई है। ये खाने पीने की वजह से नहीं, वैसे एक फसाद की बात कर रही हूं कि ये सब फसाद में आता है। नफसा नफसी का जो ये दौर हो गया, ये फसाद है। ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे यानी अपने काम है। हाथों की कमाई का मतलब क्या, तुम्हारे अपने काम है जिसकी वजह से तुम ये तकलीफें सह रहे हो। कुछ लोग अल्लाह से नाराज हो जाते हैं, फलानी जगह पे बारिश नहीं हुई, वो अल्लाह कैसा है जिसने बारिश नहीं की। ओ भाई, तुमने खुद अपनी जान पे मुसीबत डाली है। वह माँ असाबा को मैं मुसीबत इन फबीमा का सब बताई दी को भैया फोन कथीर है। सूरह शुरा में हमने पढ़ा है ना ये, कि तुमको जिस कदर मसाइब पहुंचते वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत है। और बहुत सी बातों से तो अल्लाह ताला वैसे ही दरगुजर फरमा देता है, अल्लाह तो सारों चीजों पे पकड़ता ही नहीं है। आप देखेंगे वो उसमें से ये जो ऑयल स्पिल हो गया था समंदर के अंदर, मछलियां मर गई, पानी सारा पल्यूट हो गया, फसाएं पल्यूट की हुई, कहते हैं ये इतनी पल्यूशन है हवा के अंदर और इंसान उसको इनहेल कर रहा, क्या उसका बनेगा, उसके अंदर क्या जा रहा है। तो ये जो सुनामियां और ये जो सब चीजें आ रही, ये सब इंसानों के अपने करतूत होते हैं। कभी कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो रही कि रुक ही नहीं रही, कहीं हो ही नहीं रही। अब वो कह रहे हैं कि आइंदा के लिए ऐसे होगा, क्योंकि इतना ये जो पोल्स हैं ये इतने पिघल रहे हैं, इतनी वहां पे दिखा रहे थे कि जहां पे पहले बिल्कुल बर्फ होती थी और इंसान जा ही नहीं सकता था, अब वहां पे ग्रीनरी होने शुरू हो गई है। वजह क्या है, क्योंकि वो बर्फ पिघल गई है, वहां पे जमीन निकल आई है, तो ग्रीन हो गया वो खित्ता, नॉर्थ पोल का दिखा रहे थे। अब वो जो पिघल रहा है तो वो पानी बन बन के, वो कई खित्ते ऐसे होंगे, कई लैंड ऐसी होगी जिसके ऊपर पानी आ जाएगा, वो मुल्क ही डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो मिट जाएंगे। अब ये पेशीन गोइयां, कई जगह ऐसी होंगी जहां पे बिल्कुल ही नहीं पानी होगा, वहां पे खुशहाली होगी, कहत हो जाएगा। ये किसने किया, खुद तुम्हारे अपना फसाद है। ये आयत इतनी ज्यादा आज रेलिवेंट है ना, इतनी रेलिवेंट है, आप किसी चीज में उठा के देख लें ये आयत वहां पे फिट होती है। जो भी दुनिया के फसाद आप उसके पीछे जाके देखें, इंसान तेरे अपने कमाल हैं ये, अल्लाह को नहीं ब्लेम कर सकते। अब वो जो अल्लाह से नाराज हो के बैठ जाते हैं ना, वो उनको ये दिखाई जाए आयत, जो तुम्हारे अपने कारनामे हैं। लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह चखाए उनको बाज वो जो उन्होंने अमल किए। तुम्हारे अपने अमलों का नतीजा है। आप देखें ना कि एक हदीस में आता है, एक हद जो है अगर कायम हो जाती है तो एक हद का कायम होना जमीन वालों के हक में 40 दिन की बारिश से बेहतर है। क्या मतलब है इसका, अबू दाऊद की यह रिवायत है। इसलिए कि हद कायम होने से मुजरिम गुनाह से बाज रहेंगे। हद जब कायम होगी, चोर का हाथ काटा जाएगा, कातिल को के सांस लिया जाएगा, तो कत्लो गार चोर चकारी ये सब चीजें खत्म होंगी, तो फिर गुनाह नहीं होंगे। जब गुनाह नहीं होंगे तो आसमान और जमीन से बरकतें लोगों को मिलेंगी। ये जो बरकत उठ गई ना, हम सब परेशान है कि क्या बात है, बरकत नहीं, ना वक्त में बरकत, ना खाने में बरकत, ना सेहत में बरकत, जिंदगियों में बरकत नहीं है। 60-70 साल जिंदगी गुजार के चले जाते हैं कुछ भी, लेकिन ये क्या है, बरकत उठ चुकी है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना और शरीयत के मुताबिक फैसले करने लगेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, उस वक्त जाके फिर जमीन अपनी बरकतें लौटा देगी। एक अनार होगा और लोगों की इतनी बड़ी जमात होगी, पूरा कबीला खा लेगा, इतना बड़ा होगा उसका छिलका, इतना बड़ा होगा, लोग उसके साए नीचे बैठ जाएंगे। एक ऊंटनी का दूध पूरे कबीले को काफी हो जाएगा। ये सारी बरकतें जब शरीयत नाफिज होगी तब, इसका मतलब है जब गुनाह होते हैं ना तो बरकतें मिट जाती हैं, खैर मिट जाती है। जब अल्लाह की फरमा बरदारी होती है, इताअत होती है, तो बरकतें बरकतें हो जाती हैं। इसीलिए आज ये जो हमारे बेचैनियां, जो हमारे इर्द गिर्द जो इतना कुछ हो रहा है कि ऐसे लगता है कि कोई यानी इतना फसाद है, किस किस फसाद का नाम लें, वो इस वजह से है कि जब गुनाह बढ़ जाते हैं, चाहे वो आसमानी चीजें आप ले लें फसाद में कह लें, अब बारिशें हैं या ये जो हरिकेन्स हैं या ये नहीं कि उस इलाके के लोग कुछ कर रहे हैं तो इसके ऊपर, ये इंसान के अमूमी उसके हाथों की कमाई है। यानी जब कुछ इंसान करते हैं, इंसान ही कर रहे हैं बाकी, तो फिर किसी एक जगह पे कुछ ना कुछ मसला आ जाता है। कलेक्टिव इंसानों की एक सजा होती है। तो ये पता चलता है कि मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है कि ज़ियाद के जमाने में एक थैली मिली थी जिसमें जो गेहूं के दाने थे ना, वो खजूर की बड़ी गुठली के जितने थे। हालांकि गेहूं का दाना कितना छोटा होता है। और उसमें लिखा हुआ था कि ये उस जमाने में उगते थे जिसमें अदलो इंसाफ हुआ करता था। यानी को पुराने जमाने की कोई थैली मिली थी उस जमाने में ज़ियाद के, और उसमें इतने बड़े बड़े गेहूं के दाने थे और ये लिखा हुआ था साथ। तो इस मतलब बरकतें आती हैं जहां पे अल्लाह की फरमा बरदारियां होती, बरकतें उठ जाती हैं जहां पे गुनाह होते हैं। देख लेना आप कि एक इंडिविजुअली गुनाह करता है, मसलन एक घर का सरबरा है, वो हराम लेकर आ रहा है घर के अंदर, तो उसके असरात औलाद के अंदर जाते हैं, वो भी भुगतती है, पूरा घर भुगत रहा होता है ना। घर वो उतर रहा होता है लेकिन उनको खिला रहा है, तो पूरा घर भुगतता है। तो लोग करते हैं, इंसान करते हैं, सारे इंसान फिर भुगतते हैं। इवन बारिशें बंद हो जाती हैं तो अल्लाह ताला बाज़ दफा इन ये जो बेजुबान जानवर है ना, इनकी वजह से अल्लाह ताला वो बारिशें नाजिल करता है। ये जानवर ना हो, ये बेजुबान ना हो तो बारिशें ना हो। इंसान अपने करतूतों में बाज़ दफा इतना आगे बढ़ जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो अब समझ आ गई वजह कि क्यों ये सब कुछ होता है। لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, ताकि वो चखाए उनको बाज उन आमाल का बदला जो वो करते हैं, नहीं है। ताकि लोगों को एहसास हो, लोगों को पता चले जो ये जो हम काम कर रहे हैं हम इनसे बाज आ जाएं। لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ताकि वो बाज आ जाएं, वो लौट आए। ये भी उसकी रहमत होती है कि वो यानी ऐसी चीजों का दिखाता है ताकि इंसान अपने आप को फिक्स कर ले, कम से कम खराबी को देख के ही वो फिक्स कर ले। अब इसी तरह आप देखें इस फसाद के अंदर मुसलमानों का जो आज जलील होना है पूरी दुनिया के अंदर, ये भी बीमा कसबत ऐदिन नास, ये भी लोगों की अपनी हाथों की कमाई है। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला चखाए जो उन्होंने अमल किया और वापिस लौट आए वो। इसी से हमें समझ जाना चाहिए जब ऐसी सख्तियां आती हैं, जब हमारे पर लोग ये समझ लेते हैं कि शायद अब और ज्यादा अल्लाह के दीन से दूर होना इस का हल है। ये हल नहीं है। हल ये है कि उस वक्त रुजू करो, वापस चलो, पलट आओ, शायद कि वो तौबा कर लें, शायद कि वो इन बुरे आमाल से बाज आ जाए। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। आज हमारे अपने मुसलमान मुल्कों के हालात आप देख लें, करप्शन की तो इंतहा ही नहीं है, बेईमानी, चोर बाजारी, खयानत, सूद, रिश्वतें, नहीं, और आम हर एक बंदा इसके अंदर मुलव्विस है। झूठ, झूठी कस्में बाजारों के अंदर, झूठ, बेईमानियां, चाहे वो गाहक हो तो चाहे दुकानदार हो, और हर तरफ एक पोल्यूशन का बाजार है। खुद ही कहते हैं पोल्यूशन बहुत है, हुकूमत कुछ नहीं करती। आप खुद तो शीशा गाड़ी का खोल के और माल्टों के छिलकों से भरा हुआ थैला बाहर फेंक देते हैं, और बाहर ही माल्टा छीलते हैं और केले का छिलका बाहर फेंक देते हैं, फिर आप कहते हैं ये हुकूमत का बड़ा कसूर है। कई जगह दिखाते हैं वो कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ, कूड़ा इतना गार्बेज, इतना गार्बेज, देखा हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत नहीं कुछ कर रही तो तुम तो हो ना इंसान, तुम्हें नहीं समझ आती कि सारे अहले इलाका ही मिलके उसको साफ करना शुरू कर दो, क्यों डंप करते हो वहां पे कूड़ा और पोल्यूशन फैला रहे। ये फसाद अपने हाथों की कमाई है। याद रखें पीछे जाके आप देखेंगे हर जगह इंसान के अपने हाथों की कमाई नजर आएगी। एड्स किस तरह फैलनी शुरू की, जरा इसकी तहकीक कर लीजिएगा, एड्स कैसे शुरू हुआ था आपको खुद पता चल जाएगा। कुलसीरु फिल अर्थ, कह दीजिए चलो फिरो जमीन में। फंजुरु कैफा काना आकिबतुल्लदीना मिन क़ब्ल, फिर देखो किस तरह हुआ अंजाम उन लोगों का जो इससे पहले थे। जमीन में जरा चल फिर के देखो, मोमिन की जो सैर होती है ना, वो खाना पीना पिकनिक नहीं होती, वो सैर भी करता है तो उसमें गौर व फिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है। बस सैर सपाटा ही करके आना ये कोई मकसद नहीं होता सैर का, जो 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 सैर जिसका कुरान में जिक्र है ना, ये सैर भी एक मकसदियत वाली होती है। एक बाज़ दफ़ा इबरत इंसान लेता है, बाज़ दफ़ा अल्लाह की निशानियां देख के अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह की कुदरतें देख के उसको पहचानता है, गौर व फिक्र करता है। तो फिजिकली भी आप सैर कर सकते हैं जाके, किताबें पढ़ के भी आप दूर दूर की जगहों का फाइंड आउट कर सकते हैं, और आज तो किताबों से भी ज्यादा, बल्कि ये जो आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो सारा मंजर दिखा देंगे, कहीं नॉर्थ पोल दिखा रहे हैं, कहीं पुराने लोगों की कहानियां दिखा रहे हैं, कहीं कुछ और चीजें दिखा रहे हैं, तो आप उससे बहुत सीखते हैं, बहुत आपको गौर व फिक्र का मौका मिलता है। तो ये फरमाया चाहे उस तरह से आप सैर कर लें, पढ़ के करें या देख के करें, आप जब सैर करो तो फन जरूर देखो क्या क्या हुआ अंजाम उन लोगों का जो पहले आए थे, क्या हुआ अंजाम उनके, जब खंडरात दिखाते हैं, उनकी तरक्कियां दिखाते हैं कि इतने तरक्की याफ्ता थे, व्हील उस वक्त ईजाद किया हुआ था उन्होंने, इतने तरक्की याफ्ता थे, लेकिन फिर कहाँ चले गए ये, उनके खंडर आज वहां पे खड़े हुए हैं, उनकी इमारतें खड़ी हुई हैं, कहाँ चले गए वो, उनका ऐसा अंजाम क्यों हुआ। कहते जी सारे ही मर गए, एक ही दफा मर गए सारे, कैसे मर गए, काना अक्सर मुशरिकीन, उनमें से अक्सर मुशरिक थे। इसका मतलब क्या हुआ जो हमने पीछे पढ़ा है, इंसान के अपने हाथों का आमाल होते हैं जो उसकी तबाही को लेकर आते हैं। अब जितने मर्जी आप तबसरे करा लें जी, वो इस तरह सुनामी बनी, फलाना हुआ, फिर उस जगह पे चढ़ दौड़ी, उससे सारे मर गए, तबाही हो गई, जितना भी कह लें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कान अक्सर मुशरिकी, हमें से अक्सर मुशरिक थे। आज आप उनके कई किसी म्यूजियम पे जरूर विजिट किया करें, टाइम टू टाइम देखा करें पिछले लोगों का, बताया ना आप, नहीं अगर उनकी बस्तियों में नहीं जाके देख सकते, म्यूजियम तो देख सकते हैं, म्यूजियम देखें, उनमें देखिए उनके जो पुराने चीजें, अब हम सिर्फ चीजें देख के आ जाते हैं, भाई उनके ये पहनते थे, ये वो इस तरह चलते थे, इस तरह रहते थे, बस ये थे। लेकिन एक बात नोट करिएगा कि उनके हर एक म्यूजियम में ना बुत जरूर रखे होते हैं, कि उन वो ये बुत उनके वहां से मिले हैं, उसे पता चलता है शिर्क करते थे। कई मैंने इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, उन्होंने दिखाए बुत कि ये भी इनमें से खुदाई में से निकले, तो वो बुत किस लिए थे। ये शेमफुल बात है कि अगर हम अपने घरों में भी बुत रख लें, बुत और मोमिन एक साथ नहीं हो सकते। अगर कोई बुत अपने घर में चाहे डेकोरेशन के लिए रखे हो, उनको निकालें बाहर, तो उनके घरों से बुत निकले आज तो शिर्क करने वाले थे। फअकिम वजह का, तो जमा दो अपने चेहरे को, अपने रुख को, अपनी समत लिद्दीन अल-क़य्यिम, दुरुस्त दीन के लिए। यानी वजह का मतलब यहां पे क्या, अपनी डायरेक्शन, अपने आप को कायम करो, अपनी डायरेक्शन को किस तरफ को करो, दीन क़य्यिम, यानी दीन क़य्यिम कौन सा, दुरुस्त दीन कौन सा, इस्लाम। यानी यहां पे अल्लाह ताला अपने बंदों को दीन पे जम जाने का हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह की फरमा बरदारी करो, और इस मामले में जरा भी यानी पीछे नहीं हटना, इससे पहले के, मैं ना कबली, इससे पहले के अन यातिया यौमन, आ जाए वो दिन, ला मरद्दा लहु मिन अल्लाह, जिसका टलना नहीं है अल्लाह की तरफ से, यौम इज़ यस्दऊन, जिस दिन वो मुतफर्रिक हो जाएंगे। अरे अपने दीन को ठीक कर लो, सीधे हो जाओ, कायम कर लो अपने चेहरे को, अपनी डायरेक्शन सीधी कर लो, यानी सीधे हो जाओ, हम अपनी जुबान में कहेंगे सीधे हो जाओ, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसको टलना नहीं है। यानी ये भी मतलब है टलना नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो दिन ना कभी आए, वो जरूर आएगा, और जब आ जाएगा ना तो तब भी नहीं टलेगा, यानी खत्म ही नहीं होने का नाम लेगा, पता है ना कि क्यामत के दिन की हौलनाकियों में से एक ये भी है कि वो दिन बहुत लंबा होगा, 50,000 साल के बराबर वो एक दिन है। हमने तो अपनी जिंदगी में 100 साल भी नहीं देखे, 50,000 साल के बराबर एक दिन, इस कदर वो लंबा है, वो टलेगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होने का नाम लेगा। खड़े खड़े लोग थक के चूर हो जाएंगे, इंतजार करेंगे कब हिसाब किताब शुरू। और आप सोचें, मैं उन लोगों को खास तौर पे कहूंगी जो अभी हज से आए हैं, वो ज्यादा बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि हज बहुत गर्मी का था इस दफा, तो ज्यादा बेहतर जान सकते हैं कि जब शदीद गर्मी हो और रश भी बहुत ज्यादा हो, लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं और आप थके हुए भी हैं, तब क्या हाल होता है। और वहां पे तो नंगे पैर नंगे जिस्म, कोई पानी की बोतलें नहीं होंगी जो पी पी के या सर पे डाल डाल के अपने आप को ठंडा करेंगे, वो दिन टलेगा नहीं। इससे पहले ठीक हो जा, हम तो इंतजार ही करते रहते हैं, अभी ये हो जाएगा तो फिर हम सही होंगे, अभी वो हो जाएगा तो फिर हम नेक बन जाएंगे, फिर फलानी चीज हो जाएगी, इतनी इतनी हमारी प्लानिंग है ना, कल कल फलाना वक्त फलाना वक्त। एक बुजुर्ग थे, नहर के किनारे बैठे हुए थे, वहां से एक आदमी गुजरा, उसने पूछा कि जनाब किसका इंतजार है आपको? उन्होंने कहा जी मैंने नहर के उस पार जाना है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं जरा नहर का पानी सारा गुजर जाए तो फिर मैं जाऊंगा। सुनने वाले ने जोरदार कहकहा लगाया, बोला जनाब यहां बैठे बैठे आपकी सारी उम्र गुजर जाएगी लेकिन नहर का पानी खत्म नहीं होगा। उन बुजुर्ग ने फरमाया, यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि तुम कहते हो घर और कारोबार की जिम्मेदारियां और ये मुश्किलात और वो मुश्किलात और बच्चे और ये, यानी ये सारी जिम्मेदारियां, बेटी की शादी हो जाए और ये जिम्मेदारी हो जाए और वो जिम्मेदारी पूरी हो जाए तब हम नेक बनेंगे, तब हम अल्लाह के दीन की तरफ आएंगे, तब हम अल्लाह के अहकामात पे अमल करेंगे, तब हम हज को जाएंगे, तब हम सदका व खैरात करेंगे, तब हम कुरान पढ़ेंगे, तब हम अपनी जिंदगी को फिक्स करेंगे, मगर जिंदगी खत्म हो जाएगी और ये मसाइल खत्म नहीं होंगे। इसलिए कल के धोखे से बाहर आकर आज अपने रब को राजी करो, आज अपनी डायरेक्शन सीधी करो, आज अपनी मर्जी की जिंदगी की बजाय शरीयत वाली जिंदगी गुजारो, इंतजार मत करो उसके लिए। फरमाया देखे उन लोगों का अंजाम बता के ना, देखा नहीं तुमने, सैर नहीं करके देखे कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का, उसके बाद क्या फरमाया, तुम तो अपनी डायरेक्शन सीधी कर लो इससे पहले कि वो दिन आ जाए, फिर वो टलना नहीं होगा, फिर कोई सूरत नहीं है उसके टल जाने की कि नहीं आज नहीं जी कल आ जाए क्यामत, अभी हम जरा तैयारी कर लें। और जब वो दिन आ जाएगा तो तब भी नहीं वो टलेगा, वो तो खत्म ही नहीं होने का नाम लेगा। वो कितने खुशकिस्मत लोग मुझे लगते हैं, इतने खुशकिस्मत हैं जिनके बारे में सूरह फुरकान में आया ना कि वो कैलूला के वक्त जन्नत में होंगे, कि वो अपना दोपहर का आराम जन्नत में जाके करेंगे, यानी उनका हिसाब किताब भी हो जाएगा, वो अपने ठिकाने पे भी पहुंच जाएंगे और दूसरे लोग खड़े ही रहेंगे खड़े ही रहेंगे। अल्लाह अकबर, यानी उनको सिर्फ इतना वक्त लगेगा जितना के बाज़ रिवायात में आता है 4 नफल पढ़ने के बराबर। कितने खुशकिस्मत होंगे, आप देखिए एयरपोर्टों पे ही लाइनें लगी होती है ना, हमें दिल चाहता है बस जल्दी से कोई सिफारिश मिल जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई हमारा आगे पासपोर्ट करा के हमें बस बाहर निकालो, मेरी बस बारी आ जाए जल्दी। जिसकी बारी आ जाए उसको तो लगता है मेरे से ज्यादा कोई खुशकिस्मत ही नहीं है, इंतजार भी नहीं किया जाता, हालांकि हम एसी में खड़े होते हैं, हम आरामदेह उसके ऊपर होते हैं, पेट भरा होता है, कोई प्यास नहीं होती, फिर भी। और वहां नंगे बदन नंगे पैर, भूख प्यास थकन हजूम, सूरज सवा नेजे पे, और इंतजार ही इंतजार। वो वक्त कितना लंबा मालूम होगा, जो मुश्किल वक्त होता है वैसे ही लंबा लगता है, और उससे ज्यादा तो मुश्किल वक्त कभी किसी इंसान ने देखा भी नहीं होगा। और ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे तो पता है पासपोर्ट भी ठीक है, टिकटें भी ठीक है, और नहीं इन्होंने हमें भेजना तो तब भी हम घर तो चले जाएंगे, वहां तो ये होगा कि इसके बाद अगर नहीं यहां से पार हुए तो फिर क्या है अंजाम। कि इंसान को जब जहन्नुम करीब कर दी जाएगी, जहन्नुम भड़का दी जाएगी, जन्नत करीब कर दी जाएगी, उस वक्त इंसान को याद आएगा मैंने क्या किया, क्या किया मैंने। नफ्सुमा आतरत, क्या लेकर आया। यौमइज़िन यस्सदाउन, उस दिन वो मुतफर्रिक हो जाएंगे, यानी साथ भी होंगे, स्टिल कोई साथ नहीं होगा। क्या मतलब, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे माँ बाप हैं, साथ भी हैं लेकिन कोई अपना ही नहीं, यानी हैं भी लेकिन नहीं है, इसलिए कोई नहीं किसी को पूछ रहा। ये इटसेल्फ इतनी तकलीफ दे बात है, तकलीफ दे पाते कि आप अपनों की बेरुखी ना इस जिंदगी में भी बर्दाश्त नहीं होती। इंसान के अपने उससे रुख मोड़ जाएं, अपने उसे मुंह फेर लें, अपने उसकी मुसीबत के वक्त में ना आए, तो जो तकलीफ होती है, आप कभी किसी लोगों से पूछ के देख लें जो जिनको कोई मुश्किल आई हो जिंदगी में, और उसके बाद उनके अपने ही उनको छोड़ के चले जाए, तो वो जो मुश्किल की अपनी एक वो होती है दर्द, लेकिन ये जिंदगी भर कसक रहती है उनको कि हमारे फलां वक्त में ना ये आए नहीं थे, ये उस वक्त नहीं थे। सोचो जो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त है, जिसकी ज्यादा मुश्किल वक्त कोई है ही नहीं, उस वक्त एक होते हुए भी एक खानदान है, एक बाप की औलाद है, एक मां के पेट से निकले हुए बच्चे हैं, साथ भी हैं और फटे हुए हैं, अपने ही साथ छोड़ देंगे। तो वो मुतफर्रिक हो जाएंगे, जुदा जुदा हो जाएंगे। यहां पे तो एक छत के नीचे रहते हैं, किसी का बच्चा एथीस्ट हो गया, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, या अल्लाह सब घरों को महफूज रखना इस बला से, इस आफत से। माँ बाप ईमान वाले हैं, आज तो एक छत के नीचे रह रहे हैं, उस दिन तो नहीं रह सकते, जुदा जुदा हो जाएंगे। आमाल अलग अलग हैं, किसी का कोई अमल है, किसी का कोई अमल है, कोई जहन्नुम की तरफ दौड़ लगाए हुए है, कोई जन्नत की तरफ स्ट्रगल कर रहा है, एक तो नहीं होंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी खुश नसीबी होगी, और इस दुआ को भी हमेशा करना चाहिए कि अल्लाह हमें हमारे खानदानों के साथ जन्नत में इकट्ठा करना, हमारे औलादों के साथ, हमारे वालदैन के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ, हमारे खानदानों के साथ अल्लाह, क्योंकि कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, रिश्तेदारियां इस यानी वहां पे मकाम इस बेस पे थोड़ी होंगे जी आप इसके बेटे हैं, चले जी आपको भी यही यही मकाम मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। मन कफर फअलैहि कुफ्रुहु, जिसने कुफर किया उस पर है उसका कुफर, यानी तुम अपने अमल के खुद जिम्मेदार हो, कुफर करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही है इसका वबाल, अल्लाह के ऊपर तो कोई थोड़ी है। वमन अमिला सालिहन फली अनफुसिहिम यमहदून, और जिसने नेक अमल किए तो अपने नफ्सों के लिए रास्ता हमवार कर रहा है, अपनी जन्नत की तरफ सफर कर रहा है। किसी के लिए कोई एहसान नहीं है कि तुम अभी जी हम तो इतनी नमाजें पढ़ते हैं जी, मैं तो इस दिन रोजा रखती हूँ जी, मैंने तो इतनी सबर किया जी, मैंने तो फलाने को माफ कर दिया, और जी मैं तो इतनी बस पढ़ पढ़ के मेरे सर में दर्द हो गया जी, मैं तो रात को भी जागी रही, मैं ये करती, वो तो किसी पे एहसान नहीं है आपका, और आपने किसी को माफ कर दिया तो अपने लिए जन्नत का रास्ता हमवार किया। या महदून वो है ना, मैंने आपको बताया जैसे महद है उसको बिछोना है या कुछ है तो उसको सीधा करते हैं ना, साफ करते हैं, हमवार करते हैं, अपना रास्ता हमवार कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो ना, अच्छा किसी पे क्यों एहसान जताते हो। मैंने इतनी अगर पढ़ाई कर ली या उसके लिए मेहनत कर ली, या मैंने अच्छी नमाज पढ़ी, या मैंने किसी के साथ भलाई की, किसी के काम आ गई, तो दुनिया जहान को बताने की क्या बात है, आपने अपने लिए अच्छा किया है। अल्लाह अकबर, ये मौका यानी आज ये अल्लाह ताला फरमा रहे ना, فاقم وجہ کا دین القیم من قبل ایاتی یوم اللہ مرد اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے, آج کر لو, آج موقع ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. اور وہ دن پھر ظاہری بات ہے اگر موت آ گئی تو اس کے بعد تو سمجھ لے وہ دن آ گیا, پھر تو کوئی چہرہ اتر کرنے کا, ڈائریکشن سیدھی کرنے کا تو کوئی موقع نہیں ہے. پھر موت آ جاتی ہے تو ختم بات ہماری بلا سے. پھر اس کے بعد ہزاروں سال بعد قیامت آئے یا کل آ جائے, آج ناؤ اور نیور والی بات, آج موقع ہے. اسی چیز کا انتظار نہ کرو, کون کون سی چیزیں فکس ہوں گی, یہ میرے کام ہو جائیں گے تو میں کروں گی. نہیں, سالے عمل آج کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے نا. اور اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ وہاں پہ ساروں نے بھاگ دوڑ کر کے ایک جیسے ہی ہو جانا ہے, کچھ بھی کریں گے کچھ نہیں ہوتا. فنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمین کو فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اس کے لیے خود اپنے راستے کو خود ہموار کرنا ہے, خود ایفرٹ کرنی پڑے گی, خود چلنا پڑے گا. اپنی قبر کیسی چاہتے ہیں خود آج اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہم آج کے لیے تو میٹرس بھی خریدتے ہیں, بہترین سے بہترین بیڈ روم فرنیچر بھی لیتے ہیں, آرام دہ ہو. کہ میری قبر کی آرام کا یہ خیال ہے کہ میں اس کا بھی بستر سنواروں, اور وہاں کا یہ خیال ہے کہ وہاں کا راستہ بھی میرا آسان ہو جائے, کہ میں جلدی سے جنت میں پہنچ جاؤں, کیلولا کے وقت تک ہی پہنچ جاؤں. تو یہ عمل سے ہوگا, باتوں سے نہیں, لیکچرز دینے سے نہیں, یہ عمل سے ہوگا. وَلِيَجْزِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ وہ جزا دے, بدلہ دے, جو ایمان لایا اور انہوں نے عمل کیے اچھے, اپنے فضل سے. بدلہ دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ ضروری بدلہ دے, اس کا وہ ضروری ہے اس کے اوپر کہ وہ ہر ایک کو جو بھی نیکی کرے اس کو اس کی نیکی کا اجر دے, یہ اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے آلریڈی اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ انسان کو وہ اب اس کا بدلہ نہ بھی دینا تب بھی وہ حق پہ ہے. یہ اس کی مثال ایسے سمجھیں, مثلاً ایک آدمی ایک مزدور کو رکھتا ہے کہ 100 روپیہ پر ڈے میں تمہیں دوں گا مزدوری, لیکن اس سے پہلے میں تمہیں 100 بلین روپیز دے دیتا ہوں, تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہوں 100 بلین. اگر 100 روپے کی دہاڑی پہ تمہیں رکھا تو اب وہ تھوڑے دن بعد کہے آپ مجھے دے نا میرا 100 روپیہ, کہے کہ بھائی میں نے تمہیں ایڈوانس میں ہی اتنا کچھ دیا ہوا. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں, اللہ تعالی نے ہمیں اتنا کچھ پہلے دیا ہوا, یعنی ان گنت نعمتیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے وہ پہلے سے دی ہیں. اب ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں نا, ہم تو ان نعمتوں کا بھی حق نہیں ادا کر پاتے, ان کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتے, تو ہم کس منہ سے کہیں کہ ہمیں اس کا اجر لازمی ملنا چاہیے, یہ ہمارا حق کہہ کے مجھے اس کے اوپر ملنا چاہیے. نہیں, میرا حق نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اور واقعی اللہ کا فضل ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں دوسری بات یہ, وہ نیکی کرائی کس نے؟ اگر میں یہ نیت کروں کہ میں نے مثلاً کل روزہ رکھنا, اب وہ میں صبح اٹھوں یا نہیں اٹھوں, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی دیوی توفیق ہے کہ وہ مجھے اٹھا دے, اور اللہ کا فضل اور توفیق ہے کہ وہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں روزے کے قابل ہو جاؤں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ مجھ سے کروا لے اور اس وقت میرا ذہن نہ بدل جائے اور میں کہوں نہیں نہیں چھوڑو آج تو نہیں کرتی, آج تو میں بڑی تھکی ہوں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا کہ وہ توفیق دیتا ہے, پھر اس کے بعد ہمارا کیسے حق بن گیا کہ ہم کہیں نہیں جی لازمی مجھے تو ملنا چاہیے, میں نے تو یہ اتنا اتنا کارنامہ کیا. تم نے دی بھی اللہ کی توفیق تھی جس سے کیا, اور دوسرے یہ کہ اللہ تو تمہیں آلریڈی اتنا نواز چکا ہے, لیکن پھر بھی وہ رب کتنا مہربان ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں اجر دیتا ہے, حالانکہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے. کبھی نہ یہ سمجھے کہ میرا حق بنتا ہے, मुझे तो 10 गुना मिलना चाहिए, मुझे तो 70 गुना मिलना चाहिए, मुझे तो 700 गुना मिलना, अल्लाह तूने तो ये कहा था, तूने फिर मुझे क्यों नहीं दिया। ऐसे नहीं कोई कह सकता, ऐसे नहीं कह सकता। एक आंख की नेमत की तुम कीमत अदा करने लगो ना, तो नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, रोज हर वक्त नमाज में खड़े रहो और हर दिन रोजा रखो, तो एक आंख की भी नहीं तो कीमत दे सकते तुम क्या मांगते हो। यानी मैंने जैसे आपको ये मिसाल दी कि 100 बिलियन तो पहले ही उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो क्या 100 रुपया मांगेगा कि अगले दिन भी आदमी से 100 दे दें, पहले ही इतना कुछ यूज कर रहे हो। तो इसलिए अपनी जो अपना जो जन्नत का घर है, अपनी जो वहां की यानी वहां का ठिकाना है, जो वहां का महद है या जो कब्र है, उसको हमने खुद तैयार करना है, उसको हमने खुद दुरुस्त करना है, उसको हमने खुद आरामदेह बनाना है। क्या दुनिया के लिए अगर हम ठिकाना चाहते हैं कि बेहतरीन हो, हालांकि 60-70-80 साल की जिंदगी होगी, तो वहां के लिए उससे भी अच्छा ठिकाना तलाश करें और कोशिश करें, क्योंकि वो जिंदगी कभी नहीं खत्म होगी। और हम में से किसका ठिकाना किस क्वालिटी का होगा, ये डिपेंड करता है कि हम में से किसका अमल किस क्वालिटी का है, हम में से कौन कितने ज्यादा अच्छे अमल कर रहा है, कितने खलूस के साथ कर रहा है, किसकी कितनी मजबूरियां फिर भी वो कर रहा है, उसी के मुताबिक क्वालिटी होगी हमारे ठिकाने की। तो दुनिया में भी जरा सी कोई होटल ही देखना होता है ना किसी वेकेशन पे जाने के लिए, कहते अच्छे से अच्छा होटल देखे, अच्छा होना चाहिए, आरामदेह होना चाहिए, हालांकि कितने दिन रहना होता है उसके लिए भी अच्छे पैसे, तो अब नहीं कहते बेकार सा कोई भी ले ले कोई बात नहीं, नहीं हम चाहते अच्छा हो। तो हमेशा की जिंदगी के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज करना चाहते, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मिल जाए कोई बात नहीं, कुछ भी की गुंजाइश नहीं है। वहां पे एक है जिसको कह सकते हैं लग्जरी, और दूसरा है, दूसरी जगह का नाम है टॉर्चर सेल। टॉर्चर सेल तो कोई दुनिया में भी नहीं चाहता अपने लिए, जहन्नुम से ज्यादा बड़ा तो कोई टॉर्चर सेल है ही नहीं, उसको तो नहीं कोई अफोर्ड कर सकता। तो वहां पे गुड बेटर बेस्ट की बात नहीं है, वहां पे या तो वर्स्ट है या बेस्ट है। बस एक दफा जन्नत में दाखला मिल जाए फिर नहीं वहां से कोई निकालेगा, तो उसमें दाखले की कोशिश और उसमें फिर आगे और बढ़ने की कोशिश ये करनी। तो बदला देना उसमें वाजिब नहीं है, ये उसका फजल है और वो अपने फजल की वजह से ही जन्नत देगा। पर ना जन्नत ऐसी जगह है कि वहां उसके लिए अगर हम वाकई अल्लाह का फजल ना हो तो हम अपनी कमाई से नहीं ले सकते। वहां पे तो हदीस में आता है जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा विप होता है ना, एक विप रखने की जगह, पूरी दुनिया और जो कुछ उस इस दुनिया में इस सबसे बेहतर, इतनी छोटा सा पीस ऑफ लैंड जन्नत का जो है ना, वो इतना एक्सपेंसिव, इतना प्रेशियस है, इतना कीमती है, फिर उसके लिए हमारे से तो ये क्या हम ये स्टेट खरीद सकते हैं, या सिटी, चलो स्टेट तो बड़ी बात है, ये सिटी खरीद सकते हैं? अरे हमारे से तो यहाँ पे अपना एक घर नहीं खरीदा जाता पूरी जिंदगी में मेहनत करके, तो जन्नत हमसे कैसे खरीदी जा सकती है? और खरीद नहीं सकते, ये तो अल्लाह की रहमत है, उसका फजल होगा, और किसके ऊपर होगा? जो उसको राजी करके जाएगा। तो असल बात यही है, अल्लाह को राजी कर ले। एक बात आपको बतानी थी कि जो जैसे हम पूछते हैं किसी से भाई सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, सबसे बड़ी नेमत, तो मैं आपको बताती हूँ आज की सबसे बड़ी नेमत क्या है। सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा इतनी बड़ी नेमत है, इसकी दलील मैं आपको देती हूँ। इसकी दलील ये है कि देखें, जब सारी नेमतें जन्नत की मिल भी जाएंगी ना, उसके बाद भी अल्लाह ताला जब पूछेंगे कि क्या तुम राजी हो, तुम खुश हो है जन्नत वालों, तो कहेंगे हाँ अल्लाह हम बड़े खुश हैं और हमें क्या चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे अब मैं तुम्हें वो चीज़ देता हूँ, उससे पहले नहीं कभी जन्नतियों को मिली, अब मैं तुम्हें वो चीज़ देता हूँ और वो ये है जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने गिरवाई कि अब मैं तुमसे राजी हूं और मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, ये नेमत मैं तुम्हें देता हूं। तो यानी ये नेमत अबा वॉल नेमते हैं जितनी भी जन्नत में, कौन सी नेमत है जो जन्नत में नहीं होगी? सुख, चैन, सेहत, जवानी, यानी हर दुख और तकलीफ से आजादी, और हर तरह की इस तरह की नेमत है ना, जिंदगी और प्यारों का साथ और सब तरह की ऐसी नेमते हैं। इसका मतलब इन सबसे अभाव है नेमत अल्लाह की रजा। बस अल्लाह को राजी कर लो तो तब उसके फजल के काबिल हो जाओगे। इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह मोहब्बत नहीं रखता काफरों से, वो काफरों को महबूब नहीं रखता। इसलिए कि जो मुहिब होता है ना, मुहिब मोहब्बत करने वाला, वो अपने महबूब की पसंद को फौकियत देता है ना, और जो काफिर हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि अल्लाह को क्या चीज महबूब है और क्या चीज नहीं है। और अगर हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हैं या चाहते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करे, फिर उसकी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, उसकी पसंद को अपनी पसंद के ऊपर रखना होगा, नीचे नहीं ऊपर। अब जब वो कुफार को उनके कुफर की वजह से नापसंद करता है, तो हम कैसे फिर वही तौर तरीके अपना के सोचते हैं कि अल्लाह हमें पसंद कर लेगा? वही चीजें जो वो, बुरी चीजें जो वो करते हैं वो ही हम अपना लें, कहें कि हमें वो चीजें तो ज्यादा पसंद है और अल्लाह के बताई हुई चीज नहीं पसंद है। ये तो नहीं हो सकता फिर कि आप फिर अल्लाह के प्यारे बन जाएं। अल्लाह फिर नहीं मोहब्बत रखता काफरों से। तो इसी तरह जो सच्चा मोमिन होता है ना, वो उसकी दिली मोहब्बत नहीं हो सकती काफिर से। हाँ, इंसानियत के नाते अच्छा सलूक भी करेंगे, उनके काम भी आएंगे, उनसे अच्छे अखलाक से भी पेश आएंगे, उनको उनको यानी अच्छी तबलीग भी करेंगे, उनके फितने से बचने के लिए उनके साथ एक यानी जाहिरी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं, मगर दिल का मैलान उनकी जानिब नहीं होगा। जैसे बाज लोग ऐसे होते हैं उनकी दिली मोहब्बत काफरों के साथ होती है और मोमिन मुसलमान उनको बुरे लगते हैं। हम तो नहीं मिलते जुलते अपने इन लोगों के साथ, वो ये कहते हैं उनको एलर्जी होती है मुसलमानों से और बेजार रहते हैं मुसलमानों से, तो ये सही नहीं है।